श्रोताओं, हमारा अगला हेडिंग है नेशनल कन्वेंशन। इतिहास हेज की यह बात सच है कि बहुत कम ऐसी प्रतिनिधि सभाएं होंगी जिन्हें इतनी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा जितना कि नेशनल कन्वेंशन को, और कन्वेंशन के बड़े अध्यायवास में इसका समाधान ढूंढा। इस काम में उसे काफ़ी सफलता भी मिली। कन्वेंशन की समस्याएँ विविध थीं। एक, राजा ने विश्वासघात किया है, उसके साथ कैसा व्यवहार हो, यदि सजा देनी हो तो कौन सी सजा दी जाए। दो, राजा का नया रूप क्या हो तथा संविधान का निर्माण कैसे हो, उसका स्वरूप क्या हो। तीन, युद्ध का संचालन कैसे किया जाए, देश और क्रांति की रक्षा कैसे हो। चार, देश में व्याप्त अराजकता से कैसे निपटा जाए। पाँच, देश की कानून व्यवस्था, स्थितियों में सुधार और नवनिर्माण के लिए क्या किया जाए। पाँच, क्रांति की उपलब्धि को व्यवहारिक रूप कैसे दिया जाए आदि। इतनी ढेर सारी समस्याओं से जूझने के लिए जिस एकता और संगठन की आवश्यकता थी वह भी कन्वेंशन के सदस्यों में नहीं थी। इसका कारण यह था कि दोनों प्रमुख दलों के नेता एक दूसरे के दुश्मन हो रहे थे। श्रोताओं, अब हम दो प्रमुख दलों का अध्ययन करेंगे जिनमें पहला है जिनरोदिस्ट दल। इस दल का नाम फ्रांस के एक प्रांत जिनरोद के नाम पे पड़ा था। शुरू में इस दल के सदस्य क्षेत्रीयता के आधार पर मिला जुला करते थे। बाद में इसका संगठन बढ़ने लगा और इनके लक्ष्य तथा कार्य नीतियाँ स्पष्ट होने लगीं। इस दल के प्रमुख नेता स्नार, पेसियो, वेरिन्यो, ब्रिसो, रोला और मादम रोला जैसे थे। बाद में थॉमस पेन आदि भी इस दल के प्रमुख नेता हुए। ये लोग सुशिक्षित, संभ्रांत और भावना प्रधान लोग थे। इनका ज्ञान किताबी था। प्रायः ये स्थितियों का यथार्थपरक विश्लेषण न कर पाने के कारण व्यवहारिक निर्णय नहीं ले पाते थे। वे युद्ध के पक्ष में आसमान पर सिर उठाए हुए थे। उनका ख्याल था कि युद्ध में ही वास्तविक देशभक्ति का पता चलेगा और राजा का चरित्र भी स्पष्ट हो जाएगा कि वह देश को नेतृत्व प्रदान करेगा कि देशद्रोही सिद्ध होता है। इसका पेरिस पर विशेष प्रभाव नहीं था और बिना पेरिस को साथ लिए शक्तिशाली रह पाना मुश्किल था। उन्होंने पेरिस के असाधारण महत्व की आलोचना की और कहा कि पेरिस फ्रांस नहीं है। उन्होंने पेरिस के म्युनिसिपल कम्यून को भंग कर देने और कन्वेंशन का किसी अन्य नगर को केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव किया। जैकोबिन लोगों ने इस बात पर उन्हें आड़े हाथों लिया और उन पर देश को विभाजित करने का आरोप लगाया। प्रसिद्ध इतिहासकार साल्वेमिनी के अनुसार, इसे एक बार और सुने, प्रसिद्ध इतिहासकार साल्वेमिनी के अनुसार इनका व्यवहार नाटकीय होता था। शुरू में इनका प्रभाव बढ़ा था और इनके नेताओं को मंत्री बनने का अवसर भी मिला था। इनकी मुख्य प्रतिद्वंदिता जैकोबो लोगों से थी जो इनकी तरह इन्हीं के लक्ष्यों के लिए कार्यरत और अधिक व्यवहारिक थे। पेरिस पर इन्हीं लोगों का कब्जा था। नेताओं के उत्तेजनापूर्ण भाषण से सारे देश में युद्ध का उन्माद फैल गया था और तनाव बढ़ने लगा। उसे नियंत्रित रख पाने की क्षमता इन नेताओं में नहीं थी। अराजकता बढ़ती गई और जैकोबिन लोग पेरिस पर अपने नियंत्रण के सहारे हावी होते गए। सत्ता हाथ में होने के बावजूद जिनरोदिस्ट फ्रांस में शांति व्यवस्था कायम नहीं कर पा रही थी। युद्ध में भी फ्रांस की स्थिति नाजुक थी। उनके अनुयायी सेनाध्यक्ष ने विश्वासघात किया था। आदर्शवादी जिनरोदिस्ट नेता इससे घबरा गए थे। इसी समय जैकोबो नेताओं ने उन पर हर तरह से प्रहार करना शुरू किया। पहले उन्हें बहस में गलत साबित किया गया, फिर हत्याओं का दौर शुरू हुआ। धीरे धीरे सभी प्रमुख नेता मारे गए या उन्हें भागना पड़ा। शासन तंत्र पर कब्जा कर लेने के बाद जैकोबो नेताओं ने जिनरोदिस्ट वर्ग के प्रमुख लोगों की मौत का मशीन गियोटिन पर चढ़ा दिया। इसे एक बार और सुने। शासन तंत्र पर कब्जा कर लेने के बाद जैकोबो नेताओं ने जिनरोदिस्ट वर्ग के प्रमुख लोगों को मौत की मशीन, जिसे फ्रांस में गियो 3 कहते हैं पर चढ़ा दिया गया। हाल ही में यह मशीन तैयार की गई थी। जब सुंदर, शालीन और प्रतिभाशाली मादम रोल को गियो 3 पर चढ़ाया गया तो कहा जाता है कि उसने कहा था, ओ स्वतंत्रता, तुम्हारे नाम पर कितने अपराध किए जाते हैं। आज भी क्रांति के नाम पर अत्याचार हो रहा है, या क्रांति कहीं भटक जाती है। ओ मादम रोल, तो मादम रोल की ये क्रांति के सब प्रासंगिक हो उठते हैं। इसी तरह सत्ता की लड़ाई में अंतोगत्वा जिंदोदिस्त परास्त होकर नष्ट हो गए। उन्हें कुछ इतिहासकार अस्थिर भावुक कहते हैं तो कुछ उन्हें क्रांति के शहीद सिद्ध करते हैं। फ्रांसीसी कवि ला मार्टिन ने इनकी बड़ी श्रद्धा से चर्चा की है। हमारा अगला हेडिंग है जैकोबो दल। श्रोताओं, ये फ्रांस का दूसरा प्रमुख दल था। तो आइए अध्ययन करते हैं जैकोबो दल के विषय में। सिद्धांतः ये लोग अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत भिन्न नहीं थे। नॉर्मन हैम्पसन के अनुसार जिंदोदिस्त लोग और जोकैम्बो लोगों में उग्रपंथी और तानाशाही के पक्षधर समझते थे, और जोकैम्बो दल अपने प्रतिद्वंदियों को समझौतावादी मानता था। यह स्पष्ट है कि जोकैम्बो अपेक्षा अधिक उग्र और संगठित थे। शुरू में जैबक चर्च में मिला करते थे और इसी के आधार पर इनका नाम पड़ा था। फ्रांस के अधिकांशतः बुद्धिजीवी कभी न कभी इस दल से अवश्य संबद्ध थे। इसमें निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के लोग भी और सड़कों पर जीवन यापन करने वाले दांते जैसे प्रभावशाली लोग भी थे। पहले ये राजतंत्र के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन बाद में गणतंत्र का दृढ़ समर्थन करने लगे। इनके नेताओं में बहुत प्रतिभाशाली थे। सैंजुस्त बहुत उग्र था। मारा अपने समाचार पत्र फ्रेंड एंड पीपल के माध्यम से क्रांति विरोधियों का बखिया उधेड़ा करता था। उसने उस समय पूजे जा रहे लाफियत और बधाई जैसे क्रांतिकारियों को विरोधी करार दिया। दांते एक सुलझा हुआ व्यक्ति था और उसका पालन पोषण पेरिस की सड़कों पर हुआ था। वह जैकोम्बो दल के दक्षिण पंथियों का नेता था। मार्क्स ने उसे क्रांतिकारी रणनीति का तब तक का सबसे बड़ा उस्ताद कहा है, क्योंकि वह दो टुक कहा करता था, साहसिकता और अधिक साहसिकता। उसकी दृष्टि में रोटी के बाद शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान था। काफी जीवट का व्यक्ति होने के साथ उसके हृदय की मानवीय पक्ष का भी क्रियाशील था। इसलिए जब हत्याओं का जोर बढ़ा तो वह इस ओर से निष्क्रिय हो गया। बाद में रोब्सपियर ने उसे रास्ते से हटा दिया। रोब्सपियर, हमारा अगला हेडिंग है रोब्सपियर। जैकोबो नेताओं में रोब्सपियर सबसे अधिक प्रसिद्ध था। क्रांतिकाल में उससे अधिक कोई शक्तिशाली नहीं हुआ। वह आरा प्रांत का एक वकील था। स्वभाव से वह अंतर्मुखी और रूसो का अनन्य भक्त था। कहते हैं कि वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बाइबिल की तरह तकिए के नीचे रखकर सोता था। ऐसा लगता है कि वह रूसो को खुदा और अपने को पैगंबर मानता था। वह रूसो के संसार को फ्रांस के अक्षरता उतार देना चाहता था। उसने अपनी प्रतिभा का सबसे पहला परिचय तब दिया जब उसने असेंबली के युद्ध का जोरदार विरोध किया। उस समय उसका भाषण सुनकर सभी चकित रह गए थे। धीरे धीरे वह जैकोम्बो दल का सर्वप्रधान नेता हो गया। जिसने भी उसके विचारों का विरोध किया उसे वह विरोध काफी महंगा पड़ा। हिंसक न होते हुए भी उसने हिंसा को प्रश्रय दिया। वह फ्रांस में सद्गुणों का गणतंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसकी दृष्टि में इसके लिए आतंक आवश्यक था। इसलिए उसने एक प्रकार से आतंक का राज्य स्थापित किया। उसके अनुसार बिना आतंक के सद्गुण और बिना सद्गुण के आतंक निरर्थक होते हैं। उसकी जटिल मानसिकता का परिचय इस बात से मिल सकता है कि उसने सर्वोच्च सत्ता की उपासना और इसकी अमूर्त सत्ता को मूर्त रूप देने के लिए एक ऐसी महिला को प्रतीक के रूप में चुना जिसका चरित्र भी संदिग्ध था। इससे उसकी काफ़ी बदनामी हुई। उसके विचार में एकमात्र वह स्वयं ही क्रांति को सही ढंग से समझ सकता था और क्रांति के लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता था। इस दंभ के कारण वह अतिशयवादी हो गया था। अपने व्यक्तिगत जीवन में सरल और भीड़ से कतराने वाला रोबेस्पियर दिन ब दिन तनासाह होता गया। अंत में उसने न केवल जिंदोरिस्त नेताओं बल्कि अपने सहयोगियों एबर और दांते आदि को बेकार समझकर उनकी हत्या करवा दी। आतंक के राज में रोबेस्पियर का लक्ष्य तो पूरा नहीं किया, परंतु क्रांति के विरुद्ध प्रश्नचिन्ह जरूर खड़ा कर दिया। एक स्थिति तो ऐसी आई कि लोग इस बात से सशंकित हो उठे कि किसी भी क्षण वे रोबेस्पियर के शंका का शिकार होकर गियोटिन पर चढ़ाए जा सकते हैं। अंत में ऐसा भी दिन आया कि भीड़ ने रोबेस्पियर पर हमला कर दिया। वह भागकर भी नहीं बच सका और टाउन हॉल में मारा गया। मृत रोबेस्पियर को भी गियोटिन पर चढ़ा दिया गया। उसकी मौत के बाद भी वे ताकतें पुनः सिर उठाने लगी जिनके विरुद्ध क्रांति हुई थी। क्या रोबेस्पियर एक रक्त पिपासु तनासाह था? उसकी एक समकालीन तस्वीर उपलब्ध है जिसके नीचे लिखा है, जिसे भ्रष्ट न किया जा सके। और यह सच है कि उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत पाक साफ था। क्रांति के उस दौर में आतंक एक प्रकार से अनिवार्य हो गया था। क्रांति अपनी आंतरिक गति से जिस ओर विकसित हो रही थी उससे पूंजीपति वर्ग आतंकित हो गया था और उसे भटकाना या अवरुद्ध करना चाहता था। क्रांति की उपलब्धियों को बचाने के लिए ऐसे कदम भी उठाने जरूरी थे जो सामान्यतः अनावश्यक होते। यह सच है कि रोबेस्पियर जनता से घुला मिला नहीं था और उसकी अपनी कुंठाएं भी थीं, पर उसका मूल्यांकन उसके व्यक्तिगत चरित्र के आधार पर नहीं, उसके बृहत्तर भूमिका के आधार पर होनी चाहिए, और वह प्रगति के पक्ष में खड़ा या प्रतिक्रिया के। राजा के अपराध के संबंध में कन्वेंशन द्वारा गठित अदालत में निर्णय किया गया कि राजा को एक साधारण अपराधी मानकर मुकदमा चलाया जाए। अत्यंत तनावपूर्ण माहौल में लुई को मौत की सजा देने का निर्णय लिया गया। भारी भीड़ के सामने जब लुई को गियोटिन पर चढ़ाया गया तो वह भयभीत नहीं था। उसने शायद धीरे से कहा था, मेरी मौत के बाद मेरे देश में शांति और खुशहाली बनी रहे। उसके मृत्यु इस बात का प्रमाण थी कि शासकों को केवल सरल और भले आदमी होने की वजह से क्षमा नहीं किया जा सकता। यदि वे वक्त की मांग नहीं पहचानते हैं और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कुछ दिनों के बाद मारी आंतु आनेत भी गियोटिन पर चढ़ा दिया गया। देश की अराजक स्थिति के लिए क्रांति के समर्थन या विरोध की मानसिकता, युद्ध का वातावरण, आर्थिक अनिश्चितता और जिंदोरिस्त तथा जैकोबो नेताओं की प्रतिद्वंद्विता ही प्रधान कारणों में से थे। जैसे जैसे सख्ती की जा रही थी वैसे वैसे स्थिति बिगड़ रही थी। सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन, पहले 9 से 12 सदस्यों की जनरक्षा समिति की स्थापना की गई। इससे एक सदस्य ने घोषणा की कि हमें राजाओं की निरंकुशता समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता की निरंकुशता स्थापित करनी चाहिए। शांति और सुरक्षा के लिए सामान्य सुरक्षा समिति तथा क्रांतिकारी न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। ऐसा कानून बनाया गया जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके अंतर्गत एक संदिग्ध व्यक्ति को सुबह गिरफ्तार किया जाता और दोपहर तक फैसला हो जाता और शाम होते होते चौराहों पर खड़ी भीड़ के सामने गियोटिन मशीन पर झट से उसका सिर धड़ से अलग किया कर दिया जाता था। जैकोबो लोगों के हाथ में सत्ता पुनः आने से बाद का आतंक राज्य पुनः स्थापित हो गया। इस दौर में हजारों लोग मारे गए। कुंद्रोसे जैसे विचारक, लौआसिए जैसे वैज्ञानिक और सैकड़ों बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, विचारक, कलाकार, साहित्यकार एक दूसरे शब्द ने उस समय के मापदंडों के अनुसार समाज का सर्वोत्तम बुद्धिजीवी वर्ग इस विक्षिप्तता का शिकार हो गया। यह तूफान तब रुका जब फ्रांस की प्रतिभा दृष्टि से एक शून्य पैदा हो गया। नेपोलियन जैसे तनासाह का उदय यह भी एक कारण था। देश में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई, लेकिन युद्ध क्षेत्र में फ्रांस को आशातीत सफलता मिली। इंग्लैंड के प्रयास से फ्रांस के विरुद्ध यूरोप के विभिन्न राज्यों ने एक सैनिक संघ बना लिया। फ्रांस को एक मिलीजुली शक्ति से मुकाबला करना पड़ा। कन्वेंशन ने कार्नो को युद्ध मंत्री बनाया। उसने सारे देश में सैनिकों की आम भर्ती शुरू कर दी। देश के हर व्यक्ति को कोई न कोई काम निर्धारित कर दिया गया। नौजवान सैनिक बन गए। औरतों को सिलाई, नर्सिंग और मशीन चलाने का काम दिया गया। बच्चों को पट्टियाँ बनाने जैसे आसान काम दिए गए। बुजुर्गों से कहा गया कि वे चौराहों पर खड़े होकर देशवासियों को युद्ध के लिए तैयार करें और प्रोत्साहित करें। इस प्रकार संपूर्ण देश एक सैनिक कैंप में बदल गया। धीरे धीरे उत्साही नवयुवकों की एक भारी सेना तैयार हो गई। इस नई सेना का स्वरूप, संगठन और प्रेरणा भिन्न थी। फ्रांसीसी सेना का सामंती स्वरूप समाप्त हो गया। उसमें मध्यमवर्गीय लोगों और उनके नेतृत्व की प्रधानता हो गई। पहली बार फ्रांस में सेना में साधारण किसान और कामगार भी भर्ती हो सकता था। नए तराने के रंग में रंगी यह नई सेना फ्रांस में हो रहे परिवर्तन का वाहक बन गई। यह वही नई सेना थी जिसका बाद में नेपोलियन ने भरपूर इस्तेमाल किया और जिसकी पूरी क्षमता नेपोलियन की तमाम विजयों के समय उजागर हो पाई। इस सेना ने न केवल दुश्मनों को देश के बाहर खदेड़ा बल्कि दूसरों देशों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। कार्नो, जिसे युद्ध का संयोजक कहा जा रहा था, अब विजय संयोजक कहलाने लगा। कन्वेंशन के अन्य महत्वपूर्ण कार्य। हमारा अगला हेडिंग है कन्वेंशन के अन्य कार्य। इतनी अराजक स्थितियों के बीच भी कन्वेंशन ने कुछ अस्थाई महत्व के कार्य किए। इनमें नेता शिक्षा की महत्ता के बारे में विशेष जागरूकता थी। दांतों तो शिक्षा को रोटी के बाद जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण आवश्यकता समझता था। कन्वेंशन ने शिक्षा का पुनर्गठन किया। राष्ट्र की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की गई। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई जो थोड़े से परिवर्तन के साथ आज भी फ्रांस की शिक्षा का आधार है। अब तक बहुत से कानून बने थे जिन्हें संगठित या संकलित नहीं किया गया था। कन्वेंशन ने यह काम पूरा किया। उपनिवेशों में अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर भेजने की नीति समाप्त करने के लिए गुलाम प्रथा समाप्त कर दी गई। ऋण न दे पाने के अपराध में जेल भेजने का कानून समाप्त हो गया। प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून भी समाप्त हो गया। साहित्य और कला को प्रोत्साहन देने के लिए कई नई तरह की अकादमियां गठित की गईं। नाप तौल की विविधता समाप्त कर दी गई। दुनिया के इतिहास में पहली बार दशमलव पद्धति लागू की गई जिसे आज अधिकांश देश स्वीकार करते हैं। राष्ट्र का नया कैलेंडर गणतंत्र की स्थापना के दिन से बनाया गया। वर्ष के ऋतुओं के आधार पर 12 महीनों में बांटा गया तथा उसका नया नाम ब्रूमेयर थर्मिडार आदि रखा गया। महीने को 10-10 दिनों के 3 सप्ताहों में बांटा गया और रविवार के स्थान पर हर 10वां दिन को छुट्टी का दिन घोषित किया गया। चर्च विरोधी नीति के कारण रविवार की प्रार्थना सभाएं समाप्त कर दी गईं और विवेक पर आधारित एक नया धर्म की शुरुआत की गई। इसके बाद में रोब्सपियर ने सर्वोच्च सत्ता की प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किया। ये सारे कार्य अस्थायी सिद्ध हुए, लेकिन इनकी उपलब्धि यह हुई कि धर्म को एक व्यक्तिगत चीज मान लिया गया जिसमें राज्य या किसी अन्य संस्था का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस प्रकार फ्रांस धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ। आर्थिक मामलों में वामपंथी निर्णय किए गए। फ्रांस से भागे लोगों की संपत्ति जब्त कर ली गई। धनिक वर्ग को अपराधी माना गया। जब्त की गई संपत्ति पर राज्य का कब्जा हो गया। उसे खुले बाजार में लोगों के हाथ बेचा गया। बड़ी जायदादों का बंटवारा किया गया। किसी तरह के मुआवजे की नीति समाप्त कर दी गई। जैकोबो लोगों का मत था कि धनिकों ने सदियों से शोषण किया है और अब उनके भुगतने के दिन आ गए हैं। राज्य की वित्तीय समस्याओं के हल के लिए संपन्न लोगों से आवश्यक ऋण लिए गए। वस्तुओं के मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई। रोटी का दाम राज्य द्वारा नियंत्रित होता था, तब से सदियों तक यह नियंत्रण बना रहा। फ्रांस का शासन राष्ट्रपति करे या सम्राट। अगस्त 1978 में पहली बार फ्रांस के प्रधानमंत्री रेम्बो बारे के नियंत्रण ने नियंत्रण समाप्त करने की घोषणा की। सामाजिक समानता के लिए आचार व्यवहार और वस्त्राभूषण के संबंध में भी नियम बनाए गए। भड़कीले लिबासों पर रोक लगा दी गई और सादे वस्त्रों का चलन शुरू हुआ। देश के सभी लोगों को नागरिक कहकर संबोधित किया जाने लगा। धर्म के संबंध में कन्वेंशन ने स्पष्ट घोषणा की कि धर्म के मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा और किसी भी धर्म की मदद नहीं करेगा। आम स्थानों पर धार्मिक प्रदर्शन नहीं होंगे। पादरी वर्ग को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी और उनकी वेशभूषा भी असाधारण नहीं हो सकेगी। इतनी जटिल परिस्थितियों के बीच कन्वेंशन ने अपना प्राथमिक कार्य संविधान निर्माण भी संपन्न किया। नए संविधान के अनुसार फ्रांस एक गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान में व्यवस्थापिका के दो सदनों का प्रावधान हुआ, 500 सदस्यों की परिषद और वरिष्ठ परिषद। पहली सभा में सदस्यों की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए थी। दूसरी सदन में 250 सदस्य होने थे और उनका विवाह होना अनिवार्य था। इस सदन के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 40 वर्ष रखी गई। प्रस्ताव पहले सदन में रखे जा सकते थे लेकिन उन्हें पारित दूसरा सदन करता था। कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यों का निदेशक मंडल को सौंपा गया। मंडल के सदस्यों का महत्व बराबर था। हर सदस्य बारी बारी से 3 महीने के लिए अध्यक्ष हुआ करता था। हर वर्ष एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता था और नए सदस्य की नियुक्ति की जाती थी। संविधान में इस बात का भी प्रावधान किया गया कि आगामी व्यवस्थापिका में कन्वेंशन के 2/3 सदस्य चुने जाएंगे। इस नए संविधान की कुछ विशेषताएं थीं। इस क्रांति की अतिशयता के लिए युवा उत्साह को जिम्मेदार मानकर अनुभव को विशेष महत्व दिया गया। पहले संविधान में संविधान निर्माताओं को व्यवस्थापिका में चुने जाने पर निषेध था। इस बार 2/3 सदस्य कन्वेंशन में ही चुने जाने थे। इसी प्रकार एक व्यक्ति की तनाशाही से बचने के लिए एक सामूहिक नेतृत्व की स्थापना की गई। एक ही व्यक्ति को प्रमुखता न देने के लिए डायरेक्टरी के हर सदस्य को बारी बारी से अध्यक्ष बनने का दर्जा दिया गया। संक्षेप में यही कह सकते हैं कि नए संविधान में यह प्रयास किया गया कि पहले की स्थितियों की पुनरावृत्ति न हो और फ्रांस अतिशयवादी परिणामों से बचा रहे। कन्वेंशन के कार्यों का मूल्यांकन करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि जिस तरह प्रथम संविधान ने एक बुर्जुआ राजतंत्र की स्थापना की थी, उसी तरह नेशनल कन्वेंशन ने बुर्जुआ गणतंत्र की स्थापना की। तात्पर्य यह है कि पूंजीवादी हितों की प्रधानता बनी रही। कन्वेंशन काल में फैली अराजकता का भी यही कारण था। सत्ता के संघर्ष ने उग्र रूप ले लिया। समाज के विभिन्न तत्व अपनी अपनी शक्ति तौल रहे थे। अंतोगत्वा उनकी विजय हुई तो समाज की स्थितियों में उसी हद तक परिवर्तन चाहता था कि मध्यमवर्गीय वर्ग हितों को सुरक्षित रह सके और पूंजीवादी विकास की संभावना के अनुकूल स्थिति बनी रहे। इसलिए क्रांति के ऐसे परिवर्तन स्वीकार कर लिए गए जिन्होंने सामंती और एकतंत्री जड़क समाप्त कर मध्यम वर्ग को अवसर दिया। सामंतों की संपत्ति उनके हाथ में आने दी, उन्हें सत्ता में सहभागी बनाया और समाज में ऐसे मूल्य स्थापित किए जिनसे उनकी प्रतिष्ठा हो सके। वे सब परिवर्तन स्वीकार्य थे जिनसे व्यवसाय पर से राज्य का नियंत्रण समाप्त हो और उससे निर्बाध विकास का अवसर मिले तथा निर्यात की सुविधा मिले। लेकिन जहां आंदोलन के विस्तार की संभावना थी, वहीं अंकुश लगा दिया गया। इससे मजदूरों तथा श्रमजीवी वर्ग में चेतना का विस्तार होने की संभावना थी। संपत्ति सामंतों के हाथ से निकलकर भी किसानों के हाथ में नहीं बल्कि धनिकों के पास चली गई। अधिकार दिए गए लेकिन मजदूरों को संगठित होने का अधिकार नहीं दिया गया। समानता की घोषणा होने के बावजूद मत देने का अधिकार उन्हीं को था जो प्रत्यक्ष कर देते हों, और प्रत्यक्ष कर समाज में अपेक्षतया संपन्न वर्ग ही देता था। चुने जाने का अधिकार तो और भी अधिक संपन्न लोगों को ही था। इस प्रकार ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात हुआ जो निर्णायक तौर पर पुरातन व्यवस्था की पराजय और नई पूंजीवादी व्यवस्था की जीत की स्थापना करता था। श्रोताओं, हमारा अगला हेडिंग है निदेशक मंडल 1795 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक। रोब्सपियर की मृत्यु के बाद का काल प्रतिक्रांति का काल कहलाता है। आतंक से उबरकर और किसी तात्कालिक लाभ के अभाव में लोगों ने क्रांति विरोधी तत्वों का साथ देना शुरू कर दिया। विशेष उत्साही लोग पुराणों के यदुवंशी की तरह आपस में ही लड़कर मर गए और शंका और आतंक का शिकार हो गए। बचे हुए लोग साधारण प्रतिभा के थे और हंगामों से दूर शांतिमय जीवन के पक्षपाती थे। नवगठित निदेशक मंडल में कारणों के अतिरिक्त एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे प्रतिभाशाली कहा जा सके। इसके विपरीत वारा जैसे विलासी और साधारण योग्यता वाले लोगों की प्रमुखता थी। शासन का स्वरूप शिथिल पड़ गया। पुराने तौर तरीके फिर से कायम होने लगे। भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और जैसा कि रोबिके ने कहा है फ्रांस में शासन, न्याय और वित्त सब ठप पड़ गया। जो घड़ी देर से ही चलती थी अब वह टूट फूट गई। ऐसी जड़ स्थिति में एक व्यक्ति उभर रहा था जो धीरे धीरे फ्रांस की नियति बनता जा रहा था। उस व्यक्ति का नाम नेपोलियन, जिससे संबंधित घटनाओं को हम अगले अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ उन पर संक्षेप में विचार कर लेना पर्याप्त होगा। इंग्लैंड फ्रांस में अपने हितों के प्रतिद्वंद्वियों का विकास देख रहा था और यूरोप की शक्तियों को फिर से संगठित करने का प्रयास कर रहा था। ऑस्ट्रिया अभी पराजित नहीं हुआ था और फ्रांस की पूर्वी तथा दक्षिण सीमा आक्रांत थी। मंडल ने इंग्लैंड के विरुद्ध परोक्ष युद्ध शुरू कर दिया। एक अध्यादेश द्वारा फ्रांस ने इंग्लैंड में निर्मित सामानों, विशेषकर सूती और ऊनी वस्त्रों, लोहा के सामान, चीनी मिट्टी के बर्तन और बढ़िया चीनी आदि के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में नेपोलियन ने भी इस तरह की व्यावसायिक युद्ध नीति चलाई। पेरिस में नेपोलियन का प्रभाव बढ़ रहा था। वह अपनी पत्नी जोसेफिन के जरिए बर्रा के संपर्क में आया। एक दिन उसे यह दायित्व सौंपा गया कि वह फ्रांस की दक्षिण पूर्व सेना के सेनाध्यक्ष के रूप में ऑस्ट्रिया से लोहा ले। नेपोलियन ने पहले ही अपने अभियान में उत्तरी इटली में असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया था। जिस सेना के पास न खाने को, न पहनने को, न लड़ने को, वह विजयवाहिनी की तरह आगे बढ़ती गई और नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के कैंपो फोर्मियो की संधि करने पर मजबूर कर दिया। इसे एक बार और सुने। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को कैंपो फोर्मिया की संधि करने पर मजबूर कर दिया। इस संधि से फ्रांस के हक में वह सीमा आ गई जिसके लिए लुई 14वां जीवन भर लड़ता रहा और अंत में वह असफल रहा। विजेता नेपोलियन पर संपूर्ण फ्रांस की आंख लगी हुई थी। जिसके हाथ में सत्ता थी वे भयभीत थे। नेपोलियन ने अपनी योजनाओं के लिए इसे भी उपयुक्त अवसर नहीं समझा। उसने इंग्लैंड पर भी परोक्ष रूप से प्रहार करने के लिए मिस्र पर आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा। अनुमति मिल जाने पर वह अभूतपूर्व अभियान शुरू हुआ जिसमें प्रारंभिक सफलता के बाद अंत में नेपोलियन को परास्त होना पड़ा। अपनी सेना को मिस्र में ही छोड़कर नेपोलियन फ्रांस लौटा, परंतु स्थिति ऐसी थी कि पराजित नेपोलियन ने सत्ता पर अधिकार करने का षड्यंत्र शुरू किया और अंतोगत्वा उसे सफलता मिली। 10 वर्षों के बाद क्रांति को दमन करके नेपोलियन अधिनायक बन बैठा। क्रांति के प्रभाव और परिणाम। हमारा अगला हेडिंग है क्रांति के प्रभाव और परिणाम। क्रांति की आरंभिक अवधि में यूरोप के बुद्धिजीवी युवक और अन्य लोग बहुत प्रभावित हुए। जर्मन दार्शनिक कांट ने इसे विवेक की विजय कहा। क्लाब स्टाक, इसे एक बार और सुने। क्लाब स्टाक ने कहा कि यदि मेरे पास 100 स्वर होते तो मैं सभी स्वरों से स्वतंत्रता की देवी का गुणगान करता। वस्ती के पतन के बाद सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर विद्यार्थी हर्ष विह्वल होकर नाचे। हेगल जैसे विचारकों ने क्रांति की याद में पौधे रोपे। इंग्लैंड फ्रांस का पुराना प्रतिद्वंदी था, वह भी इस घटना से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका, और वहां के कवियों ने प्रशस्ति गीत लिखे। वर्ड्सवर्थ ने अभिभूत होकर अपने युवा और फ्रांसीसी न होने पर अफसोस प्रकट किया। स्विट्जरलैंड, सवाय बेल्जियम, पोलैंड, स्वीडन, जहां कहीं भी लोग असंतुष्ट थे, इस क्रांति को प्रेरणा का स्रोत मानने लगे। स्वतंत्रता और समानता के लिए हर देश में आग सुलगने लगी। महाराज जब भी जनता की बात करता, उसका तात्पर्य यह होता कि मेहनत कश लोग नगरों में मजदूरी और गांवों के किसान हैं। उसने मध्यम वर्ग की कटु भर्सना करनी शुरू कर दी। मारा ने पेरिस की गरीब जनता को आश्वस्त कर दिया था कि गरीब ही वास्तव में देशभक्त है। उन्होंने संपन्न मध्यम वर्ग से उसी प्रकार घृणा करनी शुरू कर दी थी जिस प्रकार वे सामंतों से करते थे। वे स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जब सड़कों पर रहने वाले सर्वहारा लोगों का प्रदर्शन बढ़ने लगा तो मध्यम वर्ग का आतंकित होना स्वाभाविक था। उग्रपंथियों के प्रभाव में सामान्य जनता यह समझने लगी कि व्यवस्थापिका में उनके प्रतिनिधि केवल संपन्न लोगों के हित में कार्यरत हैं, उन्हें गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है। जब नेशनल गार्ड का गठन हुआ था तब उन्होंने देखा कि उनका नेतृत्व सामंती सेनापति लाफियत के हाथ में है और गार्ड असेंबली की रक्षा का एक उपकरण है। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि मध्यम वर्ग और सामान्य वर्ग के हितों में भी द्वंद्व पैदा होता जा रहा है। मध्यम वर्ग समझने लगा कि क्रांति उसके हाथों से निकलती जा रही थी क्योंकि वह उनके हितों से दूर जा सकती थी। दूसरी ओर सामान्य वर्ग मौजूदा स्थितियों से संतुष्ट नहीं था। यथास्थिति के समर्थकों पर भी प्रहार किया गया। हर देश के सत्ताधारियों ने अपने देश में क्रांति की संभावना पर गौर किया और उसके विरुद्ध प्रयास करने लगे। इसी विरोध ने उन्हें फ्रांस के विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा दी। क्रांति के विरोध में सबसे पहली आवाज उठाई इंग्लैंड के राजनेता और विचारक एडमंड बर्क ने। क्रांति के 2 वर्षों के अंदर ही उसने एक पुस्तक लिखी, फ्रांसीसी क्रांति पर कुछ विचार। इसी पुस्तक में उसने क्रांतिकारी परिवर्तनों की भर्त्सना और परंपरा की प्रशंसा की। उसने इंग्लैंड में हो रहे क्रमिक विकास को ही आदर्श बनाया। राजा रानी के अपमान की उसने निंदा की और कहा कि यही स्थिति बनी रही तो अराजकता और तथा हिंसा बढ़ेगी। उसकी यह बात भी सच सिद्ध हुई। बर्क के विचारों का टॉमस पेन ने तर्कसंगत उत्तर दिया है। यह स्पष्ट है कि सारे यूरोप में क्रांति के समर्थक और विरोधी दोनों थे, लेकिन क्रांति ज्यों ज्यों उग्र होती गई त्यों त्यों कुछ समर्थक और इसके विरोधी भी होते गए। धीरे धीरे प्रेरणा के रूप में ही नहीं वास्तविक अर्थों में क्रांति दूसरे देशों में पहुंची। जहां जहां फ्रांसीसी सेनाएं पहुंची वहां वही व्यवस्था लागू कर दी जाती जो फ्रांस में थी। इसी तरह नेपोलियन ने भी क्रांति का संदेश दूर दूर तक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में पहुंचाया था। जब उसने अपने देश के उन सिद्धांतों का दमन कर दिया तब भी दूसरे देश में वे जीवित रह गए। यह निर्विवाद है कि क्रांति के बाद फ्रांस और परोक्ष रूप से यूरोप अब वह नहीं रह सका जो पहले था। पुरातन व्यवस्था का मूल रूप सामंती था। आर्थिक सामाजिक जीवन का चरित्र भी सामंती था। क्रांति ने उसे ध्वस्त कर दिया। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि में पूंजीपति वर्ग की ताकत बढ़ी हुई थी। उत्पादन के साधन बदल रहे थे। विनिमय के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा था। क्रांति ने परिवर्तन की धारा को तेज कर दिया। जीवन का कोई भी क्षेत्र उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। यद्यपि नेपोलियन ने अपना अधिनायकत्व स्थापित किया पर वह भी क्रांति की उपलब्धियों को नकार नहीं सका। जब फ्रांस आक्रामक हुआ तो फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरणा लेकर अन्य देशों ने उससे लोहा लिया। यूरोप में क्रांति का एक सिलसिला चल पड़ा। विकास की यात्रा की एक मंजिल लगभग पूरी हुई। बाद में 1830, 1848 और 1870 में फ्रांस तथा यूरोप के अन्य देशों में क्रांतियां हुई। 1917 में रूस में तथा 1949 में चीन क्रांतियां हुई। मानव मुक्ति यात्रा अब भी निरंतर जारी है। श्रोताओं, इस प्रकार फ्रांस की क्रांति का यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।